एक हफ्ते बाद अरुणिमा बालकनी में किसी से बात कर रही थी। जी चौहान साहब जी, नहीं मैंने पेपर देख लिए हैं और मैंने उन पर साइन भी कर दिए हैं। आप होटल का काम जल्द खत्म कीजिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। सॉरी चौहान साहब, प्रॉब्लम थोड़ी पर्सनल है, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं अपना ये होटल क्यों बेच रही हूँ। और हाँ, ये पैसे आप इस अकाउंट में भेजिएगा जो मैंने आपको दिया है। जी हाँ, अकाउंट होल्डर का नाम मिश्री ही है। अरुणिमा फ़ोन पर बात करके वापस कमरे में आती है और फ़ोन को फिर से साइलेंट करके अपने बैग में रख लेती है। पिछले एक हफ्ते से अरुणिमा अपना होटल बेचने के पीछे लगी हुई थी, लेकिन ये होटल बेचना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि होटल आस्तिक ने अरुणिमा को गिफ्ट के रूप में दिया था। इसीलिए उसे छुपाकर अरुणिमा को ये काम करना था, क्योंकि अगर आस्तिक को इस चीज़ की भनक लग जाती है तो शायद अरुणिमा ये होटल फिर कभी नहीं बेच पाती, और इतनी मेहनत से जो उसने यहाँ से बाहर निकालने की प्लानिंग की है वो सारी ख़राब हो जाती। अरुणिमा का अकाउंट आज भी आस्तिक ही हैंडल करता है, इसीलिए अरुणिमा अपने अकाउंट में इतना बड़ा अमाउंट नहीं रख सकती थी। उसने मिश्री के नाम पर जो दूसरा अकाउंट ओपन किया है, जिसके बारे में आस्तिक को कुछ नहीं पता है, अरुणिमा अपने सारे हिडन अमाउंट उसी में रखती है। जब से प्रणाली यहाँ रहने आई है, तब से ही वो अरुणिमा और जानवी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। वो तो शुक्र है कि जानवी कुछ हैंडल कर लेती है, वरना अरुणिमा की तो प्रणाली जान ही निकाल देती। पता नहीं प्रणाली को इतनी भूख कहाँ से लग गई, हर घंटे उसे कुछ ना कुछ नया खाने का मन करता है, और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उसने इटालियन खाने की इच्छा जाहिर की है। अरुणिमा सीढ़ियों से नीचे आती है तो देखती है जानवी रसोई की तरफ जा रही थी। अरुणिमा जानवी को रोकते हुए कहती है, जानवी। जानवी पलटकर अरुणिमा को देखती और कहती है, जी भाभी, आपको चाहिए था? अरुणिमा जानवी के पास आई और उसे देखकर कहा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और दरअसल मैं तुम्हें जो पेपर कटिंग दी थी ना, तो उसे एक फाइल में अटैच कर दो। जानवी रसोई की तरफ देखकर कहती है, लेकिन भाभी मैं तो प्रणाली के लिए इटालियन बनाने जा रही थी। अरुणिमा हंस देती है और कहती है, उसके टाइप का इटालियन तुमसे नहीं बनेगा। वो कहती है उसे इटालियन भी खाना है पर उसमें एक भी सब्जी नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ और वो फाइल अटैच करो, मैं उसके लिए इटालियन बना देती हूँ। जानवी अपना सर पीट लेती है और उसने कहा, भाभी और कितने दिन यहाँ रहेगी? नहीं, मैं वैसी भाभी नहीं हूँ जो अपनी ननद के मायके रहने पर ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन जिस तरीके की हरकत प्रणाली कर रही है ना, ऐसी तो दुनिया की कोई ननद नहीं करती है। अब पता चला भाभियाँ क्यों चाहती है कि उनकी ननद जल्दी जल्दी अपने ससुराल वापस चली जाए। भाभी मैं तो कहती हूँ भैया से बात कीजिए और उनसे कहिए कि वो सक्षम भैया को फ़ोन करें और प्रणाली को जल्द से जल्द वापस ले जाएं। सच कह रही हूँ भाभी, एक हफ्ता और ये लड़की यहाँ रुकी ना, विदेशी खाना बनाते बनाते हम लोग रोटी सब्जी का स्वाद भूल जाएंगे। जानवी की बात पर अरुणिमा हंसने लगती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, सक्षम भैया? तुम सक्षम को भैया बुलाती हो? जानवी मुस्करा देती है और हाँ में सर हिलाती है। वो कहती है, हाँ दरअसल जब मैं सक्षम भैया से पहली बार मिली थी ना, तो गलती से उन्हें भैया कह दिया था। बस तब से ही उनके लिए भैया ही निकलता है, और उन्होंने भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, बल्कि वो तो सामने से कहते हैं कि मैं उन्हें भैया कह के ही बुलाऊं। अरुणिमा मुस्कुरा देती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है, भगवान करे उनकी बहन भी जल्दी मिल जाए, बेचारे बचपन से अपनी बहन को तलाश कर रहे हैं। जानवी हैरानी से पूछता है, मतलब मैं समझी नहीं भाभी, सक्षम भैया की बहन कहीं खो गई है क्या? अरुणिमा गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, दरअसल जब वो छोटी थी ना, तो उनके घर में काम करने वाली एक नौकरानी उनकी बहन को चुरा कर ले गई थी। बेचारे सक्षम भैया ने अपने माता पिता के साथ अपनी बहन को भी खो दिया था। बचपन से ही वो अपनी बहन को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रही है। जानवी भी उदास मन से कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ सक्षम भैया के साथ, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। आस्तिक इस वक्त अपने माँ के कमरे में था। कमरा पूरी तरह से बंद था और रोशनी के लिए सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट चल रही थी। आस्तिक के सामने उसकी माँ की तस्वीर थी, जिसे देखकर उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। अभी के अभी डाइवोर्स पेपर पर साइन करो, और अब मुझे तुमसे और तुम्हारे इन बच्चों से छुटकारा चाहिए, मैं और नहीं रह सकता तुम लोगों के साथ। सीमा जी ने रोते हुए अपने हाथों में पकड़े उस डिवोर्स के पेपर को देखा और फिर अभय को देखकर कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, हमारे बच्चे हैं, अभय आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? भाड़ में जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जी रही हो और कहाँ मर रही हो। तुम्हारे साथ मैं एक और दिन नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए चुपचाप इस डाइवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करो और निकलो यहाँ से। अभय ने गुस्से में सीमा पर भड़कते हुए कहा। सीमा अपनी आंखों में आंसू लिए और हताश चेहरे के साथ डिवोर्स पेपर और प्रॉपर्टी के पेपर को देख रही थी। उसने लगभग अभय के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभय प्लीज इतने पत्थर दिल मत बनिए, ये आपके भी बच्चे हैं, उन्हें अपने पिता की भी जरूरत है, मैं बिना आपके बच्चों को इतनी बड़ी दुनिया में अकेले कैसे पालूंगी?
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर। सीमा रोते हुए अभय से रहम की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वो पत्थर दिल इंसान ना तो सीमा पर रहम कर रहा था और ना ही उन चार छोटे छोटे बच्चों पर। कीर्ति इस समय सीमा की गोद में थी और अपनी माँ को देखते हुए वो भी रोई जा रही थी, और आस्तिक एक कोने में खड़ा होकर पृथ्वी और कीर्ति को संभाल रहा था। आस्तिक देख पा रहा था उसकी माँ कितना समझाने की कोशिश कर रही है। वो इस इंसान के सामने गिड़गिड़ा रही है कि वो उसे ना छोड़े और उसके बच्चों को इतनी बड़ी दुनिया में बेसहारा ना करे, पर उस इंसान ने सीमा की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती तलाक देने पर मजबूर किया। लेकिन सीमा भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, उसने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया। अभय ने जब देखा कि सीमा डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर रही है तो उसने एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर मार दिया। सीमा फर्श पर गिर गई और साथ में कीर्ति भी।